G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमेशा ही जो मेंबर देश हैं, सदस्य देश हैं, उनके बीच में आर्थिक सहयोग को ज्यादा मकसद होता है आगे बढ़ाने का, मजबूती के साथ ऐसे उपाय ढूंढना जो कि अगर आर्थिक मंदी की स्थिति हो, इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति हो जाए, तो सभी मित्र देश कैसे कोऑपरेट करें कि उससे बाहर निकला जा सके। ये एक मजबूत एजेंडा इस बार भी रहने वाला है। लेकिन मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं G20 सम्मेलन में, और आर्थिक तौर पर जो समर्थन दिया जा रहा है कई देशों की तरफ से आतंकवाद को, इंटरनेशनल टेररिज्म को, वो मेन फोकस रहने वाला है भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री की पुरजोर ये कोशिश होने वाली है कि इस मसले पर सभी देश एक साथ सोचे विचार करें और मजबूती के साथ किसी रणनीति के साथ सामने आए, ताकि कम से कम जो फंडिंग की जा रही है टेररिज्म की, उसको किसी भी सूरत में रोका जा सके। क्योंकि अब सिर्फ साउथ एशिया ही टेररिज्म से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि पूरा ग्लोब, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, टेररिज्म से जूझना पड़ रहा है। लिहाजा ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा टैक्स इवेजन को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2 साल पहले भारत में सरकार में आए थे, तो उन्होंने काले धन को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हालांकि मोदी सरकार ने नया और सख्त कानून बनाया कि काला धन देश से बाहर ना जा सके, लेकिन अभी भी आरोप मोदी सरकार पे लगते हैं कि जिन लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो अभी तक लाने में वापस वापस भारत लाने में नाकामयाब रही है सरकार। इस बाबत कोई कार्रवाई हो सकती है, तो मित्र देशों के बीच कोशिश होगी प्रधानमंत्री मोदी की कि इस बात को लेकर के सहमति हो सके कि अगर इस तरह से टैक्स हेवन्स में, जहां पर टैक्स की रियायतें ज्यादा है, उन देशों में पैसे इकट्ठे हैं या इकट्ठा करने की अभी भी कोशिश हो रही है, तो उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भारत और दूसरे मित्र देशों के साथ शेयर की जाए, ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जा सके, इस तरह के क्राइम को रोका जा सके। वहीं पर इसेंशियल ड्रग्स की मार्केट एक्सेस हो, रेमिटेंसेस जो कि पैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उस पर जो कर लगता है उसको कम किया जा सके, ताकि फैसिलिटेट कर सके एक दूसरे को। ये वो तमाम इकोनॉमिक मुद्दे हैं, और टेररिज्म से लड़ने के का भारत का एक रोड मैप है जो भारत चाहता है कि G20 में इस पर बातचीत हो। हालांकि इससे अलग बहुत क्रूशियल बायलैटरल्स भी होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल खत्म भी हो गई है, जिसको लेकर के कुछ देर में दोनों ही सरकारों की तरफ से ब्रीफ करके इसकी जानकारी भी दी जाने वाली है कि भारत और चीन के बीच, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत में क्या कुछ सामने आया है।
जी, ये बताइए, वही मेरा अगला सवाल था कि G20 तो है, लेकिन जो भारत और चीन के संबंधों की अगर बात करें, तो क्या आपको लगता है कि उस विषय में भी बातचीत होगी? वहां पर भी कोई डेवलपमेंट आप देखते हैं?
जी बिल्कुल, क्योंकि तो बहुत क्रुशियल है। अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया कि चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत खत्म हुई है, काफी क्रुशियल है, क्योंकि प्रधानमंत्री वियतनाम के दौरे से चीन में पहुंचे हैं, और वियतनाम और चीन के बीच सबसे मुखर चीज जो जिस पर ये दो देश आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वो है साउथ चाइना सी का विवाद। और अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट पे नजर डालें जो कि भारत और वियतनाम के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा खत्म होने के बाद जारी की गई, उसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स है भारत और वियतनाम में। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि भारत और वियतनाम ये मानते हैं कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के फैसले को चीन को और दूसरे देशों को उसका सम्मान करना चाहिए, और कोई भी फोर्स साउथ चाइना सी को लेकर के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और इसका सम्मानजनक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के फैसले के मुताबिक फैसला होना चाहिए। यानी कि अनकहे शब्दों में भारत ने वियतनाम के पोजीशन का साथ दिया है। वियतनाम ने उसी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि भारत की इस पोजीशन को वियतनाम इसको इसका स्वागत करती है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चीन को मुश्किल में डाला जरूर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री को खुद एनर्जी का मुद्दा उठाना है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। भारत को पूरी उम्मीद थी कि उसी रात और उसके अगले दिन तक भारत को एनएसजी में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी, लेकिन चीन ने विरोध कर दिया था, जिसकी वजह से 9-10 और देशों ने भारत का विरोध कर दिया था। एक और कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर चीन के राष्ट्रपति को मनाने में कि एनएसजी की मेंबरशिप के लिए वो राजी हो जाए। अब एक भारत के लिहाज से ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ देर में और जानकारियां छन के आएंगी कि भारत ने जो बलूचिस्तान को लेकर के पोजीशन लिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के पोजीशन लिया है, क्या चीन के राष्ट्रपति अपने स्तर पर इन मसलों पर भी अपनी आपत्ति सामने दर्ज कराते हैं? क्योंकि ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी उसी क्षेत्र में पड़ता है, जिस मसले को प्रधानमंत्री ने हाल में उठा दिया है खुद लाल किले से बातचीत से। तो ये वो तमाम मसले हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि काफी क्रूशियल इन दोनों की मुलाकात थी।
अच्छा ये बताएं, खबरें ये भी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से भी शायद होने वाली है, तो उस वहां पर क्या बातचीत हो सकती है?
देखिए वो बैठक कंक्लूड होने वाली होगी, इसलिए जैसा मैंने आपको कहा कि भारत और चीन की मुलाकात को लेकर के जो जानकारियां मिली है कि जो ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय की तरफ से होनी थी वो आधा घंटा विलंब हो गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो गई थी ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ। निश्चित तौर पर ये भी एक बहुत मजबूत संबंध है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, और भारत काफी उसको अहमियत देता है। कई ऐसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मसले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को साझा करने हैं, कोशिश ये करना है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सभी चीजों को लेकर के मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से न सिर्फ अमेरिका या यूरोप के देश बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत अग्रेसिवली कोशिश की जा रही है कि इसमें कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। जो मुझे सूत्रों से जानकारी इसके मुताबिक इस मुलाकात में भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश है उसको इम्पेटस देने की। 2.5 साल बीत चुके हैं मोदी सरकार के भारत में, और अब अगर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन चीजों में बाहर का इन्वेस्टमेंट मुखर तरीके से नहीं नजर आएगा तो बहुत कुछ होगा नहीं 2019 तक प्रधानमंत्री के सामने लोगों के रख पाने के। ये एक मकसद था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल एक दूसरे का सहयोग बढ़ाना जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठे तो प्रधानमंत्री उठाने वाले थे।
जी एक आखिरी सवाल आशीष आपसे कि G20 की बैठक तो हो रही है, आपके अनुसार इस तरह की बैठकें कितनी लाभदायक होती है, क्या इनसे कुछ ठोस निकल कर आता है या ये ज्यादा सिंबॉलिक होती हैं?
देखिए इकोनॉमिक कॉपरेशन की हम बात करें तो निश्चित तौर पर ठोस निकल कर आता है। पहले भी हमने देखा है कि G20 की जब भी बैठक हुई है जिन बातों को जिस पर सहमति बनी है वो बातें आगे बढ़ी हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का जो आपसी सहमति बनी थी उसका रेटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है। बड़ी खुशी की बात है कि इन बैठकों से ठीक पहले जो जिन बैठकों की बात हमने आपसे की है, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच रेटिफिकेशन को लेकर के सहमति बन गई। खुद यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इसकी घोषणा की, तो मुझे लगता है आर्थिक कोऑपरेशन का ही क्लाइमेट चेंज भी बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह के बड़े विषयों का अब पर अगर देशों के बीच सहमति बन जाती है और रेटिफिकेशन को लेकर के तमाम देश राजी हो जाते हैं तो मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आउटकम निश्चित तौर पर G20 में इस बार निकल सकता है, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे क्लाइमेट चेंज सहयोग के रेटिफिकेशन की बात हो, आतंकवाद का जो मैंने आपको बताया कि उसकी फंडिंग रोकने के लिए अगर G20 के देश एक साथ मिलकर के दबाव बना सकें उन देशों पर जो कि आतंकवाद को स्पॉन्सर करने पर का जिन पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि G20 की बैठकें संभव है कि पहले आरोप लगता रहा है कि सिंबॉलिक रही है, लेकिन कम से कम इस बार जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी शुरुआत ही अमेरिका और चीन के बीच क्लाइमेट चेंज रेटिफिकेशन को लेकर के हुई है, तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक आउटकम